जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रीनिवास वेंकटेश्वर बालाजी की, समावेत भक्त वृंद की, वीर प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। Let's speak in Hindi, huh? अनेक वक्ताओं ने विनती की हिंदी में बोलिए, बुधवार का हिंदी में बोलेंगे, देन संडे लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हिंदी में दिखाना, हिंदी है ट्रांसलेशन, वी हैव हिंदी, वेर इज योर हिंदी, लेके आना हिंदी दिखाना, शो द हिंदी परपोट, हिंदी में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Five, 1:36 श्रीमद् भागवतम्। स एमम् अपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवऋषिचरणानुशयनानु पतितगुणविसर्ग संसर्गेणानि वर्णितम् संसर्गेणानिर्वृतम् इवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। हिंदी में है क्या? ही हैज इट, हू हैज हैज इट, ठीक है हिंदी में पढ़िए, नहीं तो टेक द हिंदी भागवत। Because we are giving Hindi class, we should read in Hindi, otherwise. Five 136. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भागवत के पांचवें स्कंद के पहला अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आज एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है इस अध्याय में। प्रेमव्रत महाराज बहुत बढ़िया शासन किया, बहुत पराक्रमशाली कार्यों को भी किया, विवाहित होकर अभी एक वैराग्य का अनुभव कर रहे हैं इस श्लोक में। वर्ड बाय वर्ड, सह
वह महाराज प्रियव्रत एवं इस प्रकार अपरिमित अद्वितीय बल शक्ति पराक्रम जिसका प्रभाव एकदा एक बार तो तब देवर्षि महामुनि नारद के चरण अनुशयन चरण कमलों में समर्पण अनु तत्पश्चात पतिता गिरा हुआ गुण विसर्ग विषयों के तीन गुणों से उत्पन्न संसर्गेन संपर्क होने से अनिवृत्तम असंतुष्ट इव सदृश आत्मानं अपने आप को मन्यमान इस प्रकार सोचते हुए आत्मा स्वयं निर्वेद त्यागमय इदम यह आह कहा। तात्पर्य और भाषांतर श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूं। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा, वे भी विरक्त होकर बोलने लगे। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम।
एक मिनट, अभी हमने जो श्लोक पढ़ा उसमें बताया गया है कि अपरिमित बल पराक्रम, ऐसे एक अपरिमित का मतलब है कुछ सीमा ही नहीं, इतना बल का प्रदर्शन किया उन्होंने, पराक्रमशाली कार्यों को किया उन्होंने, वो बताया है। आगे बताया है एकदा एक बार देवऋषि चरणानुशयन, देवऋषि नारद के श्रीचरणों में समर्पित होकर उनके आदेश को पाकर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया उन्होंने। लेकिन पतित गुण विसर्ग संसर्गेण ऐसे बताया है, लेकिन उस गृहस्थ आश्रम में उन्होंने सोचा कि मैं आकर पतित गुण विसर्ग के कारण उस वो जो एक ऐसे पद में स्थित था उससे पतित होकर उनको लगा कि हम बंधन में फंस गए ऐसे, तो इसलिए उनके अंदर क्या पैदा हुआ, निर्वृतम इव ऐसे बताया गया है। निर्वृतम का मतलब है एक तरह का वैराग्य पैदा हुआ, ये उनको मन में लगा कि इसको बोलते हैं ये दिस इज रेस्टलेसनेस। इस दुनिया में दो तरह के रेस्टलेसनेस होते हैं, व्हाट इज रेस्टलेसनेस हिंदी, मन विचलित होना। अगर आपको इंद्रिय तृप्ति चाहिए मिल नहीं रहा है तो मन विचलित होता है, अगर इंद्रिय तृप्ति पाकर लात गया तभी भी मन विचलित होता है, दो अलग बार। अगर हम इंद्र तृप्ति से हताश हो गए तभी भी मन विचलित होता, हमको लगता है अरे क्या बुरा काम कर दिया मैं, ऐसे मन विचलित होता है। लेकिन अगर किसी को इंद्रियतृप्ति नहीं मिल रहा हो, मन विचलित होकर मांगता है, वो चाहिए 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 ऐसे, लेकिन ये इंद्रियतृप्ति के पीछे भागने का जो मन विचलन है वो खंडन किया गया है शास्त्र में। लेकिन इंद्रियतृप्ति पाने के बाद एक व्यक्ति को इच्छा होता है कि निर्वृत्ति ना, उससे घृणा पैदा होता है, छी छी इस तरह हमें इंद्रियतृप्ति में फंसना नहीं चाहिए, हमें भगवान के इसी चरण में आश्रय लेना चाहिए। मैं आश्रय लेने के बदले क्या कर दिया मैं, काश हाँ। इस तरह अगर किसी को लगता है, वो जो मन का विचलन बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो मन का विचलन एक व्यक्ति को भगवान के श्री चरणों की ओर लेके जाता है, और पहला विचलन क्या करता है, श्री चरणों से दूर लेके जाता है, ये बात है हाँ। इसलिए बताते हैं अनिर्वृतम इव आत्मानम, अनिर्वृतम इव आत्मान मतलब है उनको एक्चुअली निर्वृत शब्द इस्तेमाल किया है ब्लिसफुल, या निर्वृतम तनुवृतम पातव पात पद्म, ऐसे एक श्लोक आता है ना, निर्वृत शब्द का मतलब है ब्लिसफुल, अनिर्वृतम का मतलब है नॉट ब्लिसफुल, तुष्ट नहीं, उनको उनके जीवन में तुष्टि नहीं मिला, एवं आत्मानम इसलिए निर्वेद, उससे वैराग्य पैदा हुआ, दो अलग शब्द है, निर्वृतम का मतलब ब्लिसफुल और निर्वेद मतलब वैराग्य, उनका वैराग्य पैदा हो गया। निर्वृत अनिर्वृतम इव आत्मानम मन्यमान, ऐसे मन में सोचकर आत्मनिर्वेद इदमाह, ऐसे मन में एक वैराग्य जब पैदा हुआ उनके हृदय में, तब उन्होंने बोला इस तरह, अभी इन्होंने अनुवाद पढ़ा, तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभु जी।
तात्पर्य श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय 17वें श्लोक में कहा गया
है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन नपक्वो तपते ततो यदि यत्र त्वा भद्रमबोधमुष्य किं को वार्त आप्तो अभजतां स्वधर्मतः।
जिसने भगवान की सेवा करने के लिए अपना भौतिक कर्म छोड़ दिया है, वह अपरिपक्व अवस्था में रहने पर कभी कभी गिर सकता है, किंतु तो भी उसके असफल होने का कोई डर नहीं रहता। दूसरी ओर यदि कोई अभक्त अपने वृत्तिपरक कर्तव्य में पूरी तरह संलग्न रहे तो भी उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। यदि कोई किसी भी तरह किसी महान वैष्णव की शरण में जाता है और भावनावश या बोध होने के कारण कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अपरिपक्व बोध के कारण यदि वह नीचे गिर जाता है तो वह वास्तव में गिरा हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में लगे रहना एक प्रकार से स्थायी संपत्ति है। अतः यदि कोई नीचे गिरता है भी तो कुछ काल के लिए उसकी उन्नति रुक सकती है, किंतु उपयुक्त अवसर आने पर वह फिर अवश्य दिखाई पड़ेगी। यद्यपि महाराज प्रियव्रत नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार भगवान के धाम वापस जाने के लिए सेवा कर रहे थे, किंतु अपने पिता की प्रार्थना पर वे भौतिक विश्व में पुनः लौट आए। कालांतर में उनके अपने गुरु नारद के अनुग्रह से श्री कृष्ण की सेवा करने की भावना पुनः जगी। जैसा कि भगवद गीता 6.41 में कहा गया है, सुचिनाम श्रीमताम गे हे योगो भ्रष्ट अभिजायते। भक्ति योग से च्युत पुरुष को पुनः देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उसका उपभोग कर लेने के पश्चात उसे शुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपनी कृष्ण भक्ति को पुनः जागृत कर सके। प्रियव्रत के जीवन में ऐसा ही हुआ, इस सत्य के वे ज्वलंत उदाहरण है। कालक्रम से जब उन्हें अपनी संपत्ति, पत्नी, राज्य तथा पुत्रों के भोग की कामना नहीं रह गई तो उन्होंने सबको त्याग देना चाहा। अतः इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के ऐश्वर्य का वर्णन कर चुकने के बाद उनकी विराग प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। देवर्षि चरणाश्रयन शब्दों से यह सूचित होता है कि महाराज प्रियव्रत पूर्णतः देवर्षि नारद की शरण में जाकर उनके निर्देश से भक्ति की समस्त क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का कठोरता से पालन कर रहे थे। जहां तक अनुष्ठानों के दृढ़तापूर्वक पालन का प्रश्न है, उसके संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, दंडवत प्रणामास्तान अनुपतित। गुरु को तुरंत दंडवत प्रणाम करने तथा उनके आदेशों का पालन करने से विद्यार्थी उन्नति करता है। महाराज प्रियव्रत ये सारे कार्य नियमित रूप से कर रहे थे। जब तक मनुष्य इस संसार में है वह प्रकृति के तीनों गुणों गुण विसर्ग के वशीभूत रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रियव्रत भौतिक प्रभाव से मुक्त थे। इस संसार में अत्यंत निर्धन पुरुष तथा अत्यंत धनी पुरुष दोनों ही भौतिकता के वश में रहते हैं, क्योंकि वैभव तथा दरिद्रता दोनों ही प्रकृति के भौतिक गुणों से उद्भूत है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा, हमारे द्वारा अपनाए गए प्रकृति के गुणों के अनुसार प्रकृति हमें भौतिक भोग की सुविधा प्रदान करती है।
बहुत सुंदर तात्पर्य है। जैसे मैं अभी बता रहा था, द माइंड्स रेस्टलेसनेस फॉर रेनन्सिएशन, माइंड्स रेस्टलेसनेस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मन की विचलन इंद्रिय तृप्ति के लिए, नहीं तो मन की विचलन वैराग्य के लिए। उसका मतलब है जैसे ये जरूर गुरु की कृपा से ही होता है, नहीं तो नहीं। खुद कोई अपने जानकारी से, अपने बोध आत्मबोध नहीं तो ज्ञान इत्यादि से जो वैराग्य पैदा होता है वो भी क्षणभंगुर होता है, हमेशा के लिए टिक नहीं सकता है वो। अनेक लोग ऐसे वैराग्य प्राप्त कर पतित हुए हैं वापस भी इस दुनिया में। इसलिए इधर दो शब्द इस्तेमाल किया है, दंडवत अनुपतिता, गुरु को दंडवत करना, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना। ये जो देव ऋषि चरणाशु चरणानुशयन, इसके कारण प्रियव्रत के अंदर इस तरह का एक विरक्त भावना पैदा हुआ इसके कारण। तो इधर बताया जा रहा है कि प्रियव्रत महाराज ऐसे एक स्तर पर एक समय अपने गृहस्थ आश्रम में स्थित जब हुए थे, उनके मन में एक विचार उठा कि क्या हो गया, मैं कैसे देवर्षि नारद के आधीनता में रहकर शांति से हम पूर्ण रूपेण समर्पित भगवत भक्ति में जुड़े थे, हम क्या क्या दिव्य कर्मों में लगे थे, अभी इस दुनियादारी चीज़ों में पड़ा हूँ, अभी मुझे ऊपर उठना चाहिए और वापस भक्ति मार्ग को गंभीरता से लेना चाहिए। इस तरह के मन में विचार उठा उनकी, ये बहुत मंगलमय विचार है, शुभ विचार है। इस तरह के विचार उस व्यक्ति के हृदय में उदय होता है जिन्होंने जो प्रभुपाद बोलते हैं ना, रिपेंटेंस आरेज इन द हार्ट ऑफ अ गुड सोल, ऐसे पश्चाताप ऐसे एक अच्छे भक्त के हृदय में मन में उठता है। ऐसे खास करके अच्छे आत्मा का मतलब क्या है, जिन्होंने गुरु की सेवा की है, गुरु के आदेश को अपनाया अपने जीवन में, तो उनको इस तरह का एक साक्षात्कार भगवान खुद ही देते हैं। एक भक्तता इस्कॉन में पहले ब्रह्मचारी था, वो पुजारी डिपार्टमेंट भी सेवा किया, उसके बाद प्रभुपाद जी की गुरु पूजा अक्सर करता था, वो गुरु पूजा की आरती करता था, लेकिन बाद में कुछ तो भक्तों के साथ कुछ झंझट समस्या हुई तो इस्कॉन छोड़कर चला गया। तो उसके बाद कर्मी जीवन में घुस गया, कंपनी में ज्वाइन किया, पैसा कमाया, तो एक स्त्री के साथ विवाह हुआ उनकी। वो स्त्री की जो फ्रेंड थी वो इस्कॉन में गंभीरता से जुड़ी थी, तो इसके वाइफ को भी वो लेके जाकर इस्कॉन में जोड़ दिया, तो उसको मालूम भी नहीं था कि इस्कॉन में जुड़ रही है, भक्ति में गंभीर बन रही है। तो एक दिन इनके वाइफ ने इनको बोला कि चलिए हम आज इस्कॉन जाते हैं, वो बोला था नहीं हमको उधर नहीं आना है, ऐसे बोला था। वो बोले नहीं नहीं मैंने माला वगैरह चालू की है, अच्छा लगता है हमको, आइए दर्शन लेकर आते हैं। तो गया था दर्शन के लिए उसके साथ मंदिर में। वो तो पहले तिलक पहनता था, शिका था, धोती कुर्ता इत्यादि था, अभी तो पूरा बदल गया, जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है, बाल बढ़ाया है, कंपनी में काम कर रहा है। तो जब पत्नी के साथ गया था वो इस्कॉन में, वो लोग जब पहुंच गए, श्रृंगार दर्शन था, उसके बाद जब गुरु पूजा चालू हुई तो एक कोने में खड़ा था, जब पुजारी ने छामर उठाया ऊपर जोर से रोने लगा है, क्योंकि ये भी प्रभुपाद जी की आरती आरती करता था खुद। तो जो विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर बोलते हैं इस्कॉन में, इस्कॉन का मतलब है कृष्ण भवन अमृत में, अगर कोई व्यक्ति पहले पहले जो कीर्तन सुना, नहीं तो पहले अपने हाथ में प्रसाद पाया, किसी भक्तों की कृपा का पात्र बना, उसको भक्तों को मिलने के लिए मौका मिली, दो शब्द बोलने के लिए मौका मिली, इससे मिलने वाली रस जो है ये एक व्यक्ति को खींच कर लेके आता है वापस, कभी वो उसको भूल नहीं पाएगा। और इसको इसकी इस बात की पुष्टि किधर किया गया है, आप देखेंगे कि ये व्यक्ति भी क्यों रो रहा था वो पुजारी को देख कर, क्योंकि उसको याद आ गया कि मैं भगवान की सेवा में लगा था अच्छी तरीके से, अभी सब छोड़कर माया में फंस गया, अभी कुछ मनमुटाव के कारण कुछ हट करके मैं चला गया, लेकिन कितने दिव्य मार्ग था उसको छोड़कर मैं मूर्खता से भटक गया दुनिया में, इस तरह उसको एक तरह का पश्चाताप हुई उसको, क्या था हमारा जीवन सूर्य जैसे था अभी नीचे गिर गया सूर्य भूमि में, इस तरह उनको लगा ऐसे। तो उस दिन तुरंत अपने पत्नी को पूरा अपने मन खोल कर बता दिया मैं क्या था पहले, पहले अपनी पत्नी को एक भी शब्द बोला नहीं था इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन कृष्ण भक्ति कुछ नहीं बोला था, उसके बायोडाटा में सब लिखा था इस्कॉन को छोड़कर, लेकिन अभी बोल दिया पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा है क्या तुमने ट्रेनिंग दिया है, सोना माला करते थे, दीक्षा भी हो गया था आपका, वो बोली अब तभी तो अच्छा होगी मेरे, मुझे बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं भी भक्ति में जुट रही हूँ, आप पहले से भक्ति में थे, चलो हाँ भक्ति में गंभीर बनते हैं, दोनों गंभीर बन गए उसके बाद। इसके संबंध में एक श्लोक है भागवत में, न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन मुकुंद से व्यंज बदंग संस्मृति स्मरन मुकुंदांग्रि उपगुहनम पुनर् विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनाः। ये नारद मुनि बता रहे हैं ये भी श्लोक वेद व्यास को बोल रहे हैं कि न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन मुकुंद सेव्यन, अगर किसी ने मुकुंद भगवान की श्री चरणों की सेवा किया हो उसमें मिलने वाली जो रस है उसको चख कर वो व्यक्ति कभी भी भगवान मुकुंद को भूल नहीं पाएगा, वह सदा काल के लिए उसके मन में भगवान विराजमान होंगे, हो सकता है कुछ समय के लिए भटक जाएगा भागेगा इधर उधर भागेगा लेकिन कहीं तृप्त नहीं होगा, भगवान के चरण में आ ही जाएगा वो, ये भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता है ऐसे बताते हैं। और स्मरण मुकुंदांग्री उपगुहनम पुनर, भगवान के स्मरण करते करते वो जीव भगवान के चरण में वापस लौट आ जाएगा इस तरफ। और उसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति अगर अपने ही स्वधर्म में लगा हुआ हो, क्या मतलब उसका क्या लाभ है इस दुनिया में, हजारों साल कोई काटता हो अपने स्वधर्म निरत होकर, उसको इस दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी इकट्ठा करेगा वो छोड़ कर जाएगा, लेकिन भक्ति मार्ग में जुड़ेगा तो उसको जो रस पाएगा वो रस उसको पुनः भक्ति मार्ग में लगाएगा। ये यही बात प्रियव्रत के बारे में भी बता रहे हैं इधर तात्पर्य प्रभुपाद। अगर आप ये कंपनी में काम करते हो लेकिन कंपनी वाले समझते हैं कि आपका दूसरा इच्छा है, खुद का भी आप बिजनेस चलाते हो कंप्यूटर कंपनी के कंप्यूटर में, क्या आपको छोड़ेंगे, निकाल देंगे आपको, बोलेंगे कि अरे तुम हमारा कंपनी का वेतन ले रहे हो और कंपनी के समय में तुम खुद का कमाने के लिए खुद का भी बिजनेस चला रहे हो, ये है हमारे कंप्यूटर में उधर बैठकर, तो निकाल देंगे वो। लेकिन भगवान इतने अच्छे हैं कि अगर कोई भौतिक इच्छा के साथ भी भक्ति कर रहा हो भगवान उनको नकारते नहीं, उनको बोलते ठीक है भौतिक इच्छा ना उसको पूर्ति के लिए हम आयोजन करेंगे, तो उधर भेजते हैं स्वर्ग में, ठीक है बेटा चलो वो तुम्हारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करके आ जाओ और वापस भक्ति चालू ऐसे करो। ये भगवान की बहुत बड़ा विशाल हृदय है भगवान के, ऐसे तो भक्ति में स्वीकारते हैं, इसलिए वो श्लोक बताता है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई अकाम हो शुद्ध भक्त हो, अगर किसी के अंदर अनेक तरह के सर्व काम हो मोक्ष काम हो सब लोग जा सकते हैं कृष्ण के पास। ऐसे भगवद गीता में आता है
कथन आता है कि कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कृष्ण को अपराध नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं मोक्ष प्राप्ति की, मोक्ष से ऐसे एक श्लोक है, वो भी उपास उधर बताया गया कि भगवान की उपासना वो भी करते हैं तो उनको भगवान मोक्ष भी प्रदान करते हैं। कुछ लोग निर्विशेषवादियों में चार तरीके के लोग हैं, फोर कैटेगरीज ऑफ इम्पर्सनलेस। एक व्यक्ति है जो भगवान को निंदा नहीं करता है, भक्ति का सहारा लेता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो भगवान उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। दूसरा है भगवान को निंदा नहीं करता है, भगवान की प्रशंसा करता है लेकिन वो भी मोक्ष चाहता है, लेकिन भगवान के संपर्क में आकर मोक्ष की वांछा को छोड़कर भक्ति में जुड़ जाता है, जैसे चतुष कुमार नहीं तो सुखदेव गोस्वामी, ऐसे लोग है। और तीसरा है मोक्ष चाहता है, भक्ति का सहारा नहीं लेता है, भक्ति का सहारा नहीं लेता है, और भक्ति का सहारा ना लेने के कारण वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो उसका पतन हो जाता है उसका। और चौथा है मोक्ष की वांछा है उसके हृदय में लेकिन भगवान की स्वरूप को निंदा करता है, वो नरक में जाता है, चौथा ऐसे। तो इस तरह चार तरीके के निर्विशेषवादी हैं, चार तरीके। तो इससे पता चलता है कि पहला दो कैटेगरी बोला, दोनों भगवान का आश्रय लेते हैं, एक भक्त बन जाता है दूसरे को मोक्ष प्राप्त होता है। इसका मतलब है ज्ञानियों को भी अगर मोक्ष प्राप्त करना हो, नहीं तो भक्त में जुड़ना हो, तो भगवान के पास ही आना पड़ता है उनको। अगर बाकी दो ज्ञानी हैं भगवान के पास आते नहीं, ये करता है निंदा नरक में जाता है और दूसरा निंदा नहीं करता पतन होता है उसको, दोनों को लाभ नहीं है। कम से कम जो निंदा नहीं किया उसको सिर्फ पतन होता है बस, लेकिन भगवान को निंदा करने वाले मोक्षवांछा वाले लोग जो हैं वो किधर जाते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते, ऐसे बताया गया, वो नरक में जाते हैं ऐसे। इससे ये बात क्लियर पता चलता है कि आप ज्ञानी हो, भक्त हो, योगी हो, जो भी हो, भगवान का आश्रय अगर कोई नहीं लेता उसका कुछ लाभ नहीं है उसका। अभी योगियों में भी भागवत में बताया गया कि एक योगी है वो क्या करता है, यम नियम प्राणायाम इत्यादि करके धारणा देना समाधि के स्तर पर जब आता है तब भगवान विष्णु के सुंदर रूप दिखाई देता है उसको, जो अनंत शेष में लेते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुकुट है, कुंडल है, लक्ष्मी पाद संवादन कर रही है, दुग्ध सागर है। ये जब दर्शन प्राप्त होता है वो योगी डर जाता है, क्यों, अरे मैं इतने सुंदर स्वरूप से मैं आकर्षित हो जाऊंगा तो मेरे सिद्धियां इत्यादि को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो उसको निराकार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा होता है वो योगी को। तो क्या करता है, ये जो मछुआरा होता है ये हुक लेकर एक मछली को ऐसे पकड़ता है, इस तरह वो भगवान के स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाकर उसका सहारा लेकर वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वो जो ध्यान में भगवान का रूप प्राप्त हुआ उसको नकारता है, वो नकार कर ब्रह्म में जाना चाहता है। इस तरह का एक योगी है वो ब्रह्म प्राप्त होता है उसको, कितना मूर्ख है, क्योंकि जिस तरह एक हाथ में डायमंड प्राप्त हुआ उसको फेंक कर कांच का टुकड़ा ले रहा है, ऐसे ही वो करता है योगी, ऐसे एक योगी है। और दूसरा योगी है उतना पहुंचा हुआ योगी नहीं है, ये जाता है यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार और ये भी भगवान के ऊपर ध्यान करना होता है, लेकिन अनेक भौतिक इच्छा होने के कारण भगवान के ऊपर ध्यान करने के बदले वो सिद्धियों के ऊपर ध्यान करके सिद्ध लोक में चला जाता है, वो उधर जाकर अष्ट सिद्धि को प्राप्त करके ड्रामा करता है, सब दुनिया के लोगों को दिखाता है, तो उधर फंस जाता है वो योगियों में ऐसे। इसका मतलब है भौतिक इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छा होकर भगवान का आश्रय नहीं लिया वो गलत है, क्योंकि ये योगी के पास भौतिक इच्छा था, भगवान का आश्रय नहीं लिया, गया उधर किधर सिद्ध लोक में गया, वो भटक गया अभी तो दुनिया में गोल गोल घूमते रहेगा वो। और दूसरा योगी है भगवान का सहारा प्राप्त हुआ नकार दिया, नकार कर किधर गया, ब्रह्म ज्योति में गया, अभी उधर जाकर क्या होगा, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंती अदो अनादृत विष्मदांगरे, वापिस आएगा इधर। लेकिन तीसरे श्रेणी का योगी है वो क्या करता है, ध्यान वस्ते तद्गते न मनसा पश्यंती यम योगिनो। तो भगवान को हृदय में जब पाता है, देखता है, तो उस समय सर झुकता है, ईश्वर प्रणीतानी, अपने सर झुक लेता है, बोलता है कि भगवान आप ही सब कुछ हो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। हम लोग यात्रा में गए थे वृंदावन में, ऐसे वृंदावन के जंगल में, अलग अलग जंगल में जाते समय एक स्थान में गए हम लोग, उधर बहुत बड़ा एक विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के निकट एक गुफा था, तो उधर एक फोटो भी रखा था उधर बहुत बड़ा। उस गुफा के अंदर एक योगी था, एक श्री वैष्णव योगी था, वो श्री वैष्णव भी था, अष्टांग योगी भी था। वो उधर उस गुफा के अंदर ध्यान करता था, उस वटवृक्ष के नीचे रहता था, बड़ा योगी था, बड़े अनेक सिद्धियां भी थी उसके पास, लेकिन वो विष्णु का महान भक्त था वो। तो अनेक लोग उधर सैकड़ों साल के पहले जिया था वो। तो इस तरह वो योगी था, अनेक सिद्धियों को प्राप्त करने के बावजूद भी वो भगवान का भक्त रहा हो, तो उसको वैकुंठ प्राप्ति हुआ उसको। तो उसके अनुयायी से परंपरा में, परंपरागत रामानुज परंपरा में लोग हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो ये सही योग्य है, क्योंकि भगवान का श्रीचरणों का आश्रय लिया है। इस तरह ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो, अगर भौतिक इच्छा मन में भी रहे, कुछ चिंता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो लोग वापस भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। तो भगवान का सहयोग लेना चाहिए। इसी भगवान का सहयोग लेने का मतलब है देव ऋषि चरणानुशयन। इसका मतलब है भगवान को शरण जाना मुश्किल है हमारे लिए, पता भी नहीं हमको क्या करना है। हम अनेक बार हम लोग जप करते हैं, यू नो, पूरा भगवान के ऊपर ध्यान लगाना इत्यादि हमारे हाथ वश की बात नहीं है। मन तो वश में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक गुरु, वैष्णव गुरु, परंपरागत गुरु के आश्रय में रहकर सेवा करता है और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा जप करता है, जुड़ा रहता है उनकी सेवा में, तो उसके भविष्य बहुत कल्याण का, वो बहुत मंगलमय है उसका, ऐसे भक्त का। तो इधर दंडवत प्रणाम स्थान अनुपतित, वो गुरु को दंडवत करके, गुरु के आदेशों का पालन करके एक व्यक्ति आगे भक्ति में बढ़ता है, प्रेवृत्ति ये सब करता था पहले, ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे करने के बाद गुरु के आदेशानुसार उन्होंने ये सांसारिक जीवन स्वीकारा। अब इधर एक महत्वपूर्ण बात है, अगर गुरु ने आदेश दिया एक शिष्य को तुम विवाह कर लो, विवाह करके तुम्हारे कर्तव्यों को निभाओ, भक्ति को भी चलाओ, अगर विवाह करके उसको भक्ति से दूर चला गया वो, तो अनेक लोग गुरु को कोसेंगे, गुरु को दोषारोपण करेंगे, बोलेंगे कि देखो इन्होंने ऐसे आदेश दिया, हम भटक गए, अभी इनका बात माना, अभी गड्ढे में गया। ऐसे क्या करेंगे वो गुरु, नहीं तो वरिष्ठों की निंदा करने की संभावना है। लेकिन प्रियव्रत ने ऐसे नहीं किया, वो किसको कोसा, क्या नारद को, स्वयंभू मनु को, ब्रह्मा को, विष्णु को, किसी को कोसा क्या उसने? नहीं, वो बोला कि ये मेरी पतित अवस्था है, मेरा समस्या है, उनको कुछ बोला नहीं उन्होंने। ये एक समझने की बात है, अगर उनके ऊपर अपराध करता था तो शायद भक्ति से और दूर चला जाता था, क्योंकि इस दुनिया में स्कूल के टीचर जो होते हैं आपको परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेकर उनकी इच्छा नहीं होता है कि परीक्षा में इस बच्चे को फेल किया जाए, बच्चा जब फेल हो जाएगा मैं ताली बजाऊंगा, ए फेल हो गया तुम, ऐसा नहीं है क्या, इससे उसमें सुख लूटेंगे टीचर को ही? कोई भी टीचर ऐसे नहीं, सब टीचर क्या अच्छा करते हैं, ऐसे परीक्षा दे बच्चे अच्छे मार्क ले, अच्छा पढ़ाई करे, अच्छे मार्क ले, पास होकर ऊपर चले, वही इच्छा करते हैं वो। इस तरह उन्होंने जिम्मेदार जो दिया था, ब्रह्मा जी को भी विश्वास थी कि प्रेवरत इतने महान है, वो भक्ति को साथ में लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके भक्ति को नहीं छोड़ेगा, वो भक्ति भी साथ में चलेगा उसको। इसलिए उन्होंने एक श्लोक बोला, यशत्सपत्नान विजिगीषमाणो, उन्होंने बोला कि देखो प्रेवरत, दो आश्रम है, एक है ब्रह्मचारी संन्यास आश्रम है, दूसरा है गृहस्थ आश्रम है। अभी गृहस्थ आश्रम में कोई बोलता है कि ओ मेरे इंद्रिय प्रबल है, मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा, अच्छा मैथुन करूंगा और जीवन में फंस जाऊंगा, जैसे अगर कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है ये एक तरह का मजा खाना अनुभव करता है शुरुआत में, जैसे हो मैं बाहर जाकर ऐसे डिग्री हासिल किया, इतना कमाया कंपनी में, इतना बड़ा सैलरी मुझे मिल रहा है, वो लोग मुझे फॉरेन भेज रहे हैं, मुझे मेरा खुद का कैबिन है, मेरा खुद का गाड़ी है, मैं खुद एक मकान बांध रहा हूँ उस एरिया में, और हमारा बिजनेस दुनिया में इतने पलाने पलाने दर्जनों स्थानों में हमारा बिजनेस एक्सपैंड किया हमने, साथ साथ जब उसकी विवाह होती है तो उसमें दूसरे तरीके का मजा है, सब फ्रेंड्स लोग आकर उसको भेंट देते हैं, सब हाँ हैंडशेक करते हैं, अनेक लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो उसके बाद पति पत्नी दोनों योजना करते हैं हम परिवार को कैसे चलाएंगे, और बच्चे होते हैं और परिवार का वर्धन होता है किसी का। कभी कभी आप देखेंगे भारत में कुछ लोगों का 5 पुत्र है 5 बेटी है, देखा आपने, ऐसे भी परिवार है भारत में, तो संसार बढ़ता है और बेटा का बेटा बेटी की बेटी है सब होता है, वो भी बढ़ता है परिवार में। उसके बाद पौत्र हो जाते हैं और वो आते हैं दादाजी दादी जी है, वो बुलाते हैं, तोतली बात करते हैं। तो परिवार जब बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, इस्टेट बढ़ता है, नौकर चाकर बढ़ते हैं, अनेक जानवर जैसे बैल गाड़ी और गाय, नहीं तो आजकल के ज़माने में कार, और कार है, स्कूटर है, बिल्डिंग है, बच्चों का बिजनेस, एक बेटा इधर है, वो दूसरा बेटा इधर है, उसका बिजनेस, इसका बिजनेस, उसमें पूरा एक व्यक्ति का दिमाग घुस जाता है और उसमें एक तरह का मजा भी है इसे। लेकिन संसार ऐसा है कि एक एक्सपैंड करता है, जैसे भागवत में उदाहरण दिया है एक पंछी जो होता है पक्षी, तो जब एक घोंसला बनाता है तो उसके बीवी आती है, उसके बच्चे होते हैं, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पंखे मिल जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, वो खुद का बना लेते हैं, ऐसे है तो परिवार बढ़ता है, बहुत खुश होता है। लेकिन बाद में वाइंड अप भी होता है, क्या है, जो लोग आपके निकट के लोग होते हैं, किसी का बीवी मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, किसी का बेटे का एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ बिजनेस में नुकसान होता है, कुछ लोग धोखा देते हैं इस दुनिया में, तो पारिवारिक जीवन में सुख दुख दोनों हैं। तो ये सुख दुख के खेल में जीव फंस जाता है, अभी सुख मिला मैं बहुत खुश हूँ, अभी दुख मिला रोता है। तो जैसे कभी कभी उन दिनों में आपने देखा होगा, ये हिंदी मूवी में दिखाते हैं ऐसे, तो पहले दिखाएंगे ढंग टक ढंग टक ढंग टक, ऐसे फूल फेंकेंगे, नाचेंगे गाएंगे, उसके दूसरे सीन देखेंगे करके रोएंगे, देखा ना आपने, है ना। तो सिनेमा में एक तेजी से दिखा देते हैं एक ही मूवी के अंदर 2 घंटे में, लेकिन वही जीवन में क्या होता है, थोड़ा धीरे से होता है, स्लो मोशन में, जो मूवी में 2 घंटे में देखते हैं वो 20-30 साल में होता है मूवी में, उसको कंप्रेस करके देखेंगे मूवी में मिलता है। तो इस तरह सुख दुख का मिश्रण है इस दुनिया में, तो जीव सुख दुख के खेल में फंस जाता है। तो ये लास्ट पैरा में प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं, कोई सोचेंगे कि अरे प्रियव्रत का समस्या क्या था, वो राजा बना ना, राजा बनकर इतना धन दौलत प्राप्त हो गई, राज्य प्राप्त हो गया, इतने नौकर चाकर हो गए, सब सलाम मार रहे हैं, सब लोग उनको ऊपर उठा रहे हैं बुप 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 करके। तो अगर इस तरह दुनिया की, इतने विशाल दुनिया की सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके वो फंस गया, ऐसे कोई बोलेंगे, प्रभुपाद मना कर रहे हैं, नहीं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस दुनिया में धनी व्यक्ति फंसता है मोह माया में, लेकिन गरीब व्यक्ति भी फंसता है इस दुनिया में चोरी करके। अगर कोई गरीब व्यक्ति है वो सोचता है इतने गरीब हूँ मेरी बेटी की शादी कैसे करूँगा, वो चोरी करता है, वो फंस जाता है वो भी। अगर कोई धनी है वो धन के मदांध होकर, जैसे नलकुर मणिग्रीव जैसे गलत कर्मों में, कुकर्म में फंस सकता है वो भी। इस तरह कोई बोलेगा यू नो ये अनपढ़ है, अंगूठा चाप है, नहीं तो बहुत पढ़ा लिखा है, दोनों फंसते हैं इस दुनिया में। आप देखेंगे अंगूठा चाप जो है अज्ञानी होकर इस दुनिया में जीवन जीता अंधकार में, इसलिए गलत कर्म में फंसता है वो, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो भी मायावादी बनता है। पढ़े लिखे लोग कितने लोग भी बड़े, वो तो उनका गलती बड़ा गलती करते हैं वो लोग। आपने सुना है उन दिनों में हर्षद मेहता स्कैम इत्यादि, आपने सुना होगा पेपर में है। तो ये लोग जो है ये क्या पढ़ा लिखे नहीं क्या, ये साधारण छोटा ये गरीब अनपढ़ जो होता है वो इधर कर्चीफ पहनकर, गॉगल पहनकर, ऐसे बाल रखकर, घर के ऊपर से नीचे कूद कर वो चोरी करता है किसी के घर में, लेकिन बड़ा व्यक्ति क्या करता है, एकदम कोट सूट बूट पहनकर हैंड चेक करके चोरी करता हो, है ना। दोनों इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अरे इसमें कुछ पक्षपात मत करो, दोनों अनपढ़ हो बहुत पढ़ा लिखा हो, गरीब हो बड़े धनी हो, सब लोग फंसते हैं, क्योंकि इस दुनिया में क्या है, तीन गुण है। लेकिन अगर कोई जीव भगवान की और गुरु की आश्रय लेकर तीन गुणों से ऊपर उठ गया, वो धनी हो गरीब हो फर्क नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उसका, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सही आश्रय में रहना आवश्यक है, बस वही बात है। इसलिए प्रभुपाद जी वो लास्ट पॉइंट वो बता रहे हैं इधर। तो प्रियव्रत के संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज बताया गया कि क्योंकि उसको पहले संसार में घुसने की इच्छा नहीं थी, नारद के आधीनता में रहकर शुद्ध भक्ति कर रहा था वो, लेकिन गुरुजनों के आदेशानुसार उन्होंने पदवी राज्य पदवी स्वीकारा, क्योंकि उन्होंने गुरुजनों की अनुगत होकर उनके उनकी इच्छा को पूर्ति किया, इसलिए इस बंधन से अभी तुरंत वो लोगों ने उनको उठा दिया, बचा दिया है? तो वो लोगों ने ही डाला इनको संसार में, तो वो लोगों ने तुरंत संसार से इनको निकाल दिया आसानी से। इसलिए हम लोग जो भी करते हैं मनमानी ना करते हुए हम गुरु परंपरा के अनुगत होकर हम करेंगे तो हम बचने का बचने की मार्ग है बहुत आसानी से सब अवस्था में, क्योंकि वो लोगों को मालूम था कि हमारे आदेशानुसार इन्होंने स्वीकारा है गृहस्थाश्रम, तो हमारे ऊपर कर्तव्य हमारा कर्तव्य बढ़ता है इनको सही मार्ग में स्थित करना है। तो अभी सही भक्ति मार्ग में स्थित हो जाएगा प्रियव्रत, कुछ समस्या नहीं। और हमारे हृदय में भी इस तरह एक वैराग्य पैदा होना चाहिए कि जैसे हिरण जोता भरत महाराज हिरण बने ना, तो उनके हृदय में वैराग्य पैदा हुआ, सोचा कि काश मैंने अहो कष्टम है, क्या कर दिया मैंने, बड़ा गलती कर दिया, भरत राजा होकर सब छोड़ छाड़ कर जंगल में आया था भक्ति करने के लिए, उधर एक हिरण से आकर आसक्त होकर फंस गया। इस तरह उनके मन में जब एक वैराग्य उत्पन्न हुआ तब तो गंभीर बने भक्ति में। इस तरह प्रियव्रत के मन में भी एक विचार आया कि मैं एक क्रीड़ा मृग बन गया मेरे पत्नी के हाथ में और इस दुनियादारी कार्यकलाप में डूब गया हूँ, कितना मूर्खता है, अभी भक्ति में कितना गंभीरता। इस तरह के विचार मन में उठता है, वो एक आग जैसे मन में वो आग जो है सब तरह के भौतिक आसक्तियों को जलाकर राख बना देता है वो है। लेकिन वो आग पैदा होता है क्यों, गुरु की वाणी गुरु के आदेश गुरु की कृपा इत्यादि की ओर एक व्यक्ति के हृदय में आदर हो सम्मान हो आकर्षण हो तो वो व्यक्ति तुरंत गुरु के पास भाग जाएगा और वापस आश्रय ले लेगा वो, और गुरु की कृपा से वो पहले जो आसक्ति में फंसा था वो आसक्ति उसको कट जाएगा उसको, ये बताया जा रहा है इधर। और कल के दिन आप पढ़ेंगे इस तरह का वैराग्य जब पैदा हुआ क्या बोला प्रियव्रत ने, तो उन्होंने जो बोला दो तीन श्लोक में हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर बात है सीखने के लिए। तो हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि हम हमारे हृदय के अंदर हमारे इच्छाएं जो पड़े हैं उनको कैसे हम शोधन करें, कैसे हम समझें और कैसे हम इंद्रियत्र तर्पण की ओर जो झुकाव होता है जीव की उससे हम कैसे ऊपर उठ सके। तो उसे ऊपर उठने के सुलभ मार्ग बताया गया है इधर, वरिष्ठों से आदेश लेकर उसको गंभीरता से लेकर उसको निभाओ तो उससे तुमको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उस आशीर्वाद से वैराग्य पैदा होगा। नहीं तो हम खुद कसरत करके हमारे मन को दुनियादारी चीज़ों से छुटवाना बहुत मुश्किल चलता है हमको, ये बात है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंदा की, थैंक यू।